नया सिटी में है। बोला है कि वो घोषणा में दोनों आत्मा को पहले किया है, अभी बाबा एक्सप्लेनेशन दे रहा है सिर्फ एक आत्मा की। कैसे कैसे
क्या एक आत्मा घोषणा? किस बुक? कौन सी घोषणा? 10 वर्ष की घोषणा। 10 वर्ष की घोषणा जो है वो पहले पहले जो नई दुनिया बनेगी वो प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी या निवृत्ति मार्ग की बनेगी?
प्रवृत्ति मार्ग
है। प्रवृत्ति मार्ग की बनेगी। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब एक या दो?
दो
है।
दो
प्रवृत्ति मार्ग माना ही कम से कम दो। तीन चार भी नहीं, क्योंकि उस राज्य का नाम क्या है?
आदि सनातन।
उस राज्य का नाम है विष्णु का राज्य। और विष्णु एक से नहीं बनेगा, कम से कम दो चाहिए, संगी साथी भी चाहिए। ऐसे नहीं कि सन्यासी जंगल में जाके बैठ जाए अकेला और निर्विष बन जाए, तो सन्यासी को कोई निर्विकारी कहेगा? कोई प्रैक्टिकल प्रूफ हुआ? नहीं हुआ। प्रूफ कब मिलेगा? जब साथ में हो तब प्रैक्टिकल प्रूफ कहा जाए। जेल में रहा और कहे कि हम तो निर्विकारी रहे 8 साल, वो कोई बात नहीं है। प्रूफ चाहिए। तो बाप आते ही है प्रवृत्ति मार्ग की दुनिया बनाने के लिए। नर और नारी एक वंशी नहीं होंगे, दो वंशी मिलते हैं फिर एक वंशी बन जाते हैं। एक संस्कार के होंगे लक्ष्मी नारायण या डबल संस्कार वाले होंगे? एक में एक संस्कार, दूसरे में दूसरा संस्कार? नहीं, दोनों के संस्कार मिलकर के एक हो जाएंगे, तब कहा जाएगा वैकुंठ। तो एक की तो बात ही नहीं
है। लेकिन ये जब ये क्या सपने बोला है कि सिर्फ वो आत्मा को क्या साक्षात्कार वो करके कुछ में रहेंगे, ये बाप सारी दुनिया के लिए है इसलिए वो को लग नहीं होता ऐसे हो।
वो संकल्पों की सृष्टि रची जाने की बात है या प्रैक्टिकल शरीरधारियों के आधार पर नहीं सृष्टि रची जाने की बात है? संक्षेप की
संकल्प
की सृष्टि रची जाने की बात है। संकल्प ऐसे दृढ़ हो गए, पक्के हो गए कि अब इस दुनिया का मालिक बनने वाला एक युगल है, हम ही विश्व के मालिक होंगे और कोई भी विश्व का मालिक नहीं होगा। ये संकल्पों में दृढ़ता चाहिए।
और पापा ये अष्टदेव है पूर्वज और नव ग्रुप का बीज रूप है।
नव ग्रुप की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो बीज रूप आत्माएं वो तो दूसरे दूसरे धर्म की भी है, उनमें दो को छोड़ करके नौ में से दो को छोड़ दो
आर्य समाज और
बाकी जो रह जाते हैं वो और धर्मों के बीज होंगे।
बीज होंगे और वो आधार मूर्ति है और धर्म पिता है।
हाँ, धर्म पिता है तो ऊपर से आते हैं, द्वापर से आते हैं, उनकी कोई बात ही नहीं।
सो इसमें ये भारत को बहुत दुख देने वाला कौन सी ग्रुप है, ये आधारमूर्त है या धर्म पिता की फॉलोअर्स है या बीज रूप के आत्मा हमारा भारत को उतना तंग करने का प्रयास करता है।
बहुत दुख अपने देते हैं, बहुत दुख पराए देते हैं। बहुत सुख अपने देते हैं जो अपने नजदीक रहते हैं, या बहुत सुख दूर वाले देते हैं।
हमारा कभी
जो ज्यादा दुख देगा वो ज्यादा सुख भी देगा।
लेकिन ये पहले पहले वो वो काम करने के देखने के बाद ही हम वो फॉलो करते हैं।
हम यहाँ प्रैक्टिकल संघ में कोई शूटिंग पीरियड में देख लो ना, 5000 के दुनिया में ड्रामा में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देख लो, यहाँ संघ में जो 4 बीज रूप आत्माएं हैं, उन 4 बीज रूप आत्माओं में दुख देने वाले भी हैं और बहुत सुख देने वाला भी कोई है। लेकिन जो बहुत सुख देने वाला है उसमें शिव बाप प्रवेश करता है तब बहुत सुख देने वाला है। अगर बाप प्रवेश न हुआ हो तो दुनिया का सबसे बड़ा कामी कांटा है यह सुख देने वाला है, है? क्या है
दुख देने वाला?
सबसे बड़ा दुख देने वाला लक्ष्मी जैसी आत्मा जो सृष्टि के आदि में पहले नारी से लक्ष्मी बनती है, अंतिम जन्म में क्या बनती है, क्या बनती है, है? आदि से अंत बनती है कि नहीं? आदि में विष्णु वैष्णवी थी तो अंत में भी क्या बनती है? वैष्णवी जैसा बनती है ना, एक की बन के रहती है ना, एक की बन के तो रहती है। लेकिन कैसी स्टेज में एक की बन की रहती है? कलकत्ते जैसा वैश्यालय, और उस वैश्यालय में एक की बन करके रहे और सौत के साथ जो 100% सौतन बनकर पार्ट बजाने वाली हो उसके साथ निभा के रहे तो आत्मा को दुख नहीं होता है?
बाबा अष्टदेव जो है उनको सजा नहीं मिलता है, वैसे ही सूक्ष्म वजन वासियों में भी है जो सजा ना खाने वाले।
वो रहते किसमें? सूक्ष्म वतनवासी जैसे ब्रह्मा की सोल है, सूक्ष्म वतनवासी जैसे मम्मा की सोल है, वो रहती किसमें है? जब पूरा ज्ञान का डोज उनके अंदर बैठ जाएगा 100%, जो बाप प्रजा के पिता के अंदर ज्ञान है वो ही ज्ञान बच्चा और बच्ची के अंदर बैठ जाएगा तो वो कहाँ निवास करेगी, किसके साथ रहेगी? पलट पलट के उन बीके वालों में जाएगी, तथाकथित ब्राह्मणों में जाएगी, या बाप के साथ माँ बाप के साथ रहेगी? उन्हीं में रहेगी ना, पक्का कर देगी ना कि यही हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा कल्याणकारी है। तो अंत तक जब उनके साथ ही रहेगी, और बाप का भी विरोध है, बाप अकेला नहीं जावेगा, बच्चों के साथ ही जावेगा। तो कृष्ण वाली आत्मा हो या ओमराधे मम्मा वाली आत्मा हो, साथ ही साथ संपन्न बनने चाहिए या आगे पीछे होना चाहिए? हाँ, उनका शरीर नहीं है, ये घाटा पड़ गया। उस शरीर को ही उन्होंने अपना शरीर बना लिया, जिसको कहते हैं ज्ञान गर्भ। इसे गर्भ में बच्चा होता है तो अलग है, पर्सनालिटी एक है या अलग अलग है? एक ही पर्सनालिटी कही जाएगी। वन पर्सन तैयार हो रहा है लेकिन वो देखने में तो नहीं आ रहा है।
ज्ञान से है? ज्ञान से पता चलता है
क्या? हाँ कि ये अव्वल नंबर में है और ये बाद में आने वाले, ये डायरेक्ट नर से नारायण बनने वाले हैं और ये आत्मा
नर से प्रिंस,
नर से पहले प्रिंस बनेगी, प्रिंस के बाद फिर बाप से प्रैक्टिकल जीवन में वर्षा लेकर के नारायण बनेगी।
और बाबा हम जब याद करते हैं बाप को हमारा पाप धुल जाता है, और पहले का पाप पहले धुल जाता है या आखिर जन्मों का पाप पहले?
कोई पाप होते हैं बहुत धीमी गति से किए जाते हैं, हल्का हल्का आवरण जाता है, और कोई पाप बड़ी तीव्र गति से किए जाते हैं, मन भी सारा उसमें लग गया, मन की ताकत सारी उसमें लगा दी पाप करने में, तन की तारी सारी भागदौड़ सारी ताकत उसमें लगा दी, वाचा की सारी ताकत उसी में लगा दी, तो मन वचन कर्म तीनों इकट्ठा करके जो कार्य किया जाएगा वो रिजल्ट पहले देगा या बाद में देगा?
पहले
देगा। तो बहुत से कर्म तो 63 जन्मों में ऐसे हुए हैं जो बड़ी तीव्र गति से किए गए, और बहुत से कर्म ऐसे हुए हैं तीव्र गति से नहीं किए गए, धीमी धीमी गति से किए गए। तो जो तीव्र गति से किए जाते हैं वो अगले जन्म में ही उसका फल मिलने लगता है, और धीमी धीमी बहुत धीमी धीमी गति से जो किए जाते हैं वो अगले अगले जन्मों में ट्रांसफर होते हैं, जब पक जाएंगे तब उनका फल मिले, तो अंतर पड़ जाता है। जैसे रंग चढ़ाया जाता है तो हल्का रंग चढ़ा दिया, फिर हल्का चढ़ा दिया, फिर बाद में हल्का चढ़ा दिया, और एक रंग ऐसा है एक दो बार में ही मोटा मोटा चढ़ा दिया गाढ़ा गाढ़ा, तो स्थाई ज्यादा कौन सा रहेगा? ज्यादा स्थाई, जो गाढ़ा रंग चढ़ाया जाएगा वो ज्यादा स्थाई
रहेगा,
जो धीरे धीरे चढ़ाया गया है वो ज्यादा स्थाई हो जाएगा, उसकी तो परत ही उखड़ जाएगी।
धर्म पिता के साथ साथ उनके कॉलेज जो आत्माएं उभरे गए ऊपर से वापर से, वे सदा अपने अपने धर्म में ही जन्म लेते हैं या और जन्म में भी और धर्म में भी जन्म?
जो डायरेक्ट परमधाम से उतरती है द्वापर युग से जो आत्माएं, वो द्वैतवादी होंगी या अद्वैतवादी आत्माएं होंगी? द्वैत फैलाने वाली होंगी या दुनिया को एक सूत्र में बांधने वाली होंगी? द्वैत फैलाने वाली आत्माएं होंगी। तो क्या रिजल्ट होगा? वो तो है ही विधर्मी, अपने धर्म के पक्के हैं, उनका धंधा ही है द्वैत फैलाना, झगड़ा करना और झगड़ा कराना, एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल, ये बनने ही नहीं देंगे, वो तो दुश्मन है इस बात की एकता के, वो किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते,
जन्म लेते हैं
है?
अलग अलग धर्मों में जन्म लेते हैं,
अलग अलग धर्मों में, वो अपने धर्म के पक्के होते हैं,
मतलब
इस्लामी में ही जन्म लेते रहेंगे
अंत तक,
बिल्कुल।
वो कभी भी आगे बन नहीं सकता।
दूसरों की बातों को मानने वाले भारतवासी होते हैं, माताएं दूसरों की बातों के चक्कर में आ जाती हैं या पुरुष जल्दी चक्कर में आते हैं। तो भारत जो मातृ देश है, भारत माता कहा जाता है कि भारत पिता कहा जाता है? माता कहा जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जब भगवान आते हैं तो माताएं ज्यादा निकल पड़ती हैं ज्ञान में। मातृ देश है, माताएं सहज ही दूसरी की दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेते हैं।
जगन्नाथ का मंदिर में चावल जब पका जाता है तब वो चारों हिस्सों में बांटी जाती है,
बांटी जाती है नहीं, ऑटोमेटिक चावल से हो जाते हैं।
कर्नाटक में भी ऐसा एक टेम्पल है जगन्नाथ का टेम्पल, वहाँ भी ऐसे ही होता है, अभी भी हो रहा है। ये चमत्कार इस तमो प्रधान कलयुगी दुनिया में कैसे होते हैं?
चमत्कार, चमत्कार की इसमें क्या बात है? हंडा चढ़ाया जाएगा तो वो जो बड़ा हंडा है, चावल जब पकेंगे तो एक दूसरे से चिपकेंगे, जब चिपकेंगे तो ऑटोमेटिक वो तो साइंस का नियम है, उस हिसाब से वो चार हिस्सों में बढ़ जाएगा। छोटा जो हंडा चढ़ाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता है, वो सब इकट्ठा हो जाता है। बड़ा हंडा चढ़ाएंगे तो ये भी दुनिया बड़ी है ना। देवी देवता सनातन धर्म के जो नई दुनिया स्थापन होगी, बहुत होंगे या थोड़े होंगे? दुनिया के हिसाब से थोड़े होंगे, फिर है तो चावल ही।
लेकिन सिर्फ जगन्नाथ मंदिर में ही क्यों ऐसे होती है?
जगन्नाथ मंदिर में ही चावल का अंडा चढ़ता है, दूसरी जगह तो खीर पूड़ी मेवा मेवा में स्थान 36 प्रकार के भोग लगते और जगह थोड़े ऐसा होता है।
एक ही मत चलेगी संगम विजय नारायण के द्वारा दैवी मत शुरू होती है, तो द्वापर में आसुरी मत, तो बीच का युग माना सत्युग के बाद माना संगम युग के बाद, संगम युग के बाद जब सत्य नारायण आता है ना, सत्यु का पहला नारायण के जमाने के बाद माना सात नारायण जो आते हैं सत्युग में उनके और त्रेता युग में कौन सी मत चलती है? दैवी मत
चलती है
या थोड़ा कम हो
जाती है? द्वैत तभी शुरू होगा जब देहभान देह दूसरा नंबर है, आत्मा एक है, दो चीजें हैं ना, एक देह और एक आत्मा। तो द्वैत बाद शुरू ही तब होगा जब आत्म की स्थिति का मादा कम हो जाए और देहभान की मादा जास्ती हो जाए, तब द्वैत बात शुरू होगा। माना सत्युग के दूसरे जन्म में भले दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं तो उतरती हैं, लेकिन आत्मिक स्थिति का मादा कम नहीं होता। त्रेता के 12वें जन्म में भी आत्मिक स्थिति का मादा 50% से कम नहीं होगा, ज्यादा ही रहेगा। लेकिन त्रेता के 13वें जन्म में जो आखिरी राजा आएगा उसका भाव स्वभाव संगम युग में क्या रहा है? उसका भाव स्वभाव संगम युग में आदि से ही ईर्ष्या द्वेष का रहा है, मध्य में भी ईर्ष्या द्वेष का रहता है और अंत में भी ईर्ष्या द्वेष का रहता है, खत्म ही नहीं होता। तो वो क्रिश्चियन की वृत्ति है,
वो शमाने की वृत्ति ही नहीं है, शमाने की वृत्ति ही नहीं है।
हाँ जी,
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली वर्ल्ड वॉर में
14 में जो हुई
वो
1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ
तो उसमें दो बॉम्ब फटे ना वो किसकी संकल्प से हुआ
है?
वो किसकी संकल्प से हुआ?
किसकी संकल्प से हुआ?
वो तो
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कोई रूहानी संगठन थोड़ा ही था उस समय।
नहीं था।
उस समय तो सब देह अभिमानी थे और देह अभिमानियों में भी दो ग्रुप तो थे ही, लड़ने वाले दो थे ना, तो उनमें एक जरूर ज्यादा क्रोधी था, एक बनाने वाला और दूसरा फोड़ने वाला। क्रोध आया, धड़ाके कर दिए,
पर उनमें शक्ति नहीं होता है ना बम छोड़ने
है। वो इतना बड़ा बम थोड़े ही है जो दुनिया खलास हो जाए। वो तो बम्बियां थी 20 मेगावाट की, अभी तो हजारों हजार मेगावाट के हैं, जिनसे डर बना रहेगा कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी, उसमें हम भी खलास। उधर लंदन में बैठा हुआ है हिरोशिमा नागासाकी में फोड़वाएगा तो उसको ये डर थोड़ा ही है, इसके फोड़ने से हम खत्म हो जाएंगे, हमारे ऊपर असर आ जाएगा। वो तो कोई बड़ी बात नहीं।
रशिया में भी एकदम हजारों किलोमीटर के लिए बना हुआ अभी पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं दिया था वो गलत हो गया। ये 20 वर्ष का मुक्ति वो केतु का नहीं है, वो शुक्र दशा बोलते हैं। हमारा तमिलनाडु में शुक्र दशा को बहुत अच्छा मानते हैं।
तमिलनाडु
कैसे हो गया बाबा?
तमिलनाडु का मतलब क्या है? तो मिल ना, तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते। तुम्हारी नहीं पटेगी तो हमारी भी नहीं पटेगी। डाइवोर्स कब होता है? दो में झगड़ा होता है तो वह कहते मैंने जो दूसरा है वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है, अकड़ जाता है। अब दो में एक तो पावरफुल होगा और एक कमजोर होगा। अगर कमजोर भी ये कहे तमिलनाडु तुम नहीं मिलते तो हम भी नहीं मिलते तो फिर झगड़ा ही होगा ना। तो दक्षिण भारत को भारत का विदेश क्यों कहा? भारत का विदेश इसीलिए कहा कि दक्षिण भारत वालों के पास सामने सबसे बड़ी समस्या है किस बात की? भाषा प्रॉब्लम। जो विदेशी होते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? भगवान की, भगवान को पहचानने की भाषा प्रॉब्लम। नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में भी यही फर्क है। जो हिंदी जानने वाले हैं वो तो झट से कैच कर लेते हैं नॉलेज को, उनके पूर्वजन्म के संस्कार हैं नजदीकी, और जो भाषा में उनके लिए बहुत कठिन है। उनको तो जो देहधारी गुरु हैं वो जैसा बता देंगे वैसा ही समझ लेंगे। डायरेक्ट भगवान का जो पार्ट है उससे तो कनेक्शन उनका हो ही नहीं पाता। जितनी भी भाषाएं हैं इंडियन, उनमें दो भाषाएं बहुत बेढंग हैं जो बिल्कुल नहीं मिलती नॉर्थ इंडिया से, मलयालम
का
तमिलनाडु
पक्का एकदम उल्टा,
बिल्कुल नहीं मिलती। तमिलनाडु है वो तो बिल्कुल ही है, हिंदी को पसंद ही नहीं करते। मलयालम वाले तो फिर भी उनकी चले गए।
मलयालम स्कूल में वो संस्कृत से बहुत
मिले हुए हैं
मिले हुए हैं। लेकिन तमिल में एक अक्षर भी नहीं है।
ऐसे ही है जैसे मुसलमान अपने देशों में जो मुसलमानी देश है वह हिंदी पढ़ाते हैं क्या?
नहीं,
हिंदी पढ़ाते हैं।
उर्दू अरबी
और जो क्रिश्चियन देश है
इंग्लिश,
वो हिंदी भाषा को बिल्कुल नकारते हैं। नहीं नहीं चलेगी, नहीं पढ़ाई जाती है, एकदम दुत्कारते नहीं है। बल्कि अंग्रेजों ने जितना हिंदी सीखी, वो संस्कृत सीखी है भारतीय भाषा, उतना मुसलमानों ने भारतीय भाषा को नहीं सीख पाए। मैक्स मूलर संस्कृत का कितना बड़ा विद्वान हुआ,
जीरो।
सारे वेद शास्त्र उसने छान डाले, मुसलमानों ने नहीं किया ऐसा। तो ये भी दक्षिण भारत के पश्चिमी देश मलयालम, वो क्या नाम, केरला, और पूर्वी देश तमिलनाडु, दो हैं स्टेट। ऐसे ही है, एक ज्यादा क्रिश्चियनिटी से प्रभावित रहा और दूसरा इस्लाम से प्रभावित हो गया।
तो इस माता जी का प्रश्न है, आदि में सेवक राम भक्त को ईमानदार, वफादार, बुद्धिमान, अनुभवी और सच्चा भागीदार के रूप में साबित होता है। उनको सिर्फ दो पत्नियां थे। इस झूठी दुनिया में तो 90% से भी ज्यादा झूठे, लफंगे, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी, चोर भरे हुए हैं। इनके मुकाबले सेवक राम भक्त ने किस तरीके से अति पवित्र कामी कांडे साबित होता है?
माना दो तो प्रत्यक्ष थी, चोरों की दुनिया में
बट लेके
उसकी कोई गारंटी है कि लुकी छिपी कितनी थी?
मुसलमानों को हम पाकिस्तान दिया है फिर भी वो हमसे बहुत नफरत करते हैं, इसलिए
तमिलनाडु के लोग भारत का अंग है या पाकिस्तान का अंग है?
भारत।
फिर भी वो हिंदी से इतनी नफरत क्यों करते हैं? ऐसे ही है, जब भगवान नई दुनिया बनाने आते हैं तो नई दुनिया बनाने का लक्ष्य क्या है? नहीं, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल की स्थापना करना, एकता की स्थापना करना। तो एक जो है उसको पक्का पकड़ता है और उसके मुकाबले में एक दूसरा और है वो उस बात को पकड़ता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है। शास्त्रों में एक दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य और एक देवताओं का गुरु है
बृहस्पति।
तो जो देवताओं का गुरु है और जो शुक्राचार्य दैत्यों का गुरु है, उनमें क्या अंतर है विशेष? शुक्राचार्य है एक आंख का काना,
एक नहीं है,
और उनको दोनों का दोनों आंखें। तो गुण अवगुण दोनों देखना चाहिए या एक देखें और एक न देखें? दोनों देखना चाहिए। शुक्राचार्य ने ऐसा नहीं किया, बस मेरे शिष्य हैं, मैंने इनको पढ़ाई पढ़ाई, अच्छा करें या बुरा करें इनको मुझे आगे बढ़ाना है। अंतर पड़ जाता है, यहां भी दो ग्रुप हो जाते हैं, बीज रूप आत्माओं में चार बीज हैं, चार मुख्य धर्मों के, एक है देवी देवता सनातन धर्म का पक्का, एक की ही बात मानता है, उसके मुकाबले दूसरा ऐसा खड़ा हुआ है, छह बार भट्टी कर चुका और छह बार दूसरे दूसरे धर्मों में चक्कर लगा रहा है, दूसरे दूसरे सत्संगों में, कभी मंदिर में जाता, कभी मस्जिद में जाता, कहीं गुरुजाघर में जाता, कहीं गुरुद्वारे में जाता, तो संस्कार तो पढ़ रहे हैं ना संगम युग में, एकता की संस्कार धारण करना है या द्वैतवाद अनेकता की संस्कार धारण करना है, वो संस्कार यहां पक्के हो गए बीज में, इसलिए ऐसा हो जाता है,
इसलिए इस कंधा को करीब
का समझ में आया।
अभी वो वार करने के लिए तैयार हो रहा
है,
पाकिस्तान वाला अभी वार करने के लिए तैयार हो रहा है,
उसका लक्ष्य है
हिंदुस्तान,
बांट लिया है हिंदुस्तान पाकिस्तान, बांट लिया है पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान,
कभी भी वो नहीं सकता।
पहले भी लड़ाइयां लड़ लड़ के हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा किया था हिस्ट्री में, किया था या नहीं किया था,
वो किया था,
तो वो संस्कार उनमें भरे हुए हैं, संस्कार जल्दी नहीं खत्म होते हैं, वो भी पास्ट के जो नजदीक के जन्म है वो संस्कार जल्दी नहीं जाते,
वो आदि वाले
ना, जो 84वें जन्म के नजदीक नजदीक जन्म है, 83वां 82वां 81वां 80वां, ये नजदीक के जन्म है ना, वो संस्कार जल्दी खत्म नहीं होते,
माना आधार होते।
अरे पाकिस्तानी मुसलमानों की सीधी बात उठा लो, संस्कार खत्म करने में बहुत मुश्किल है, तो वो तो यही उनकी बुद्धि में है कि बंटवारा करके हमने हिंदुस्तान को पाकिस्तान ले लिया, अब हम लड़ाई लड़के हिंदुस्तान सारा ले लेंगे, पहले भी हमारा हिंदुस्तान पर कब्जा था, अब भी हम सारे हिंदुस्तान पर हम राज करेंगे, जो विकारी बुद्धि होती है वो लड़ाई लड़ने की शौकीन होती है या निर्विकारी बुद्धि लड़ाई लड़ने की शौकीन होती है, जितना ज्यादा विकारी होगा उतना ज्यादा लड़ेगा और दूसरों को लड़ाएगा,
कभी भी शांति में
शांति पसंद नहीं करेगा। वैसे भी देखो हिंदुस्तान में जब से स्वतंत्रता आई है तब से लेकर अब तक मिलिट्री शासन नहीं हुआ, और पाकिस्तान
जब से
बार बार
बार बार लगातार ऐसे समझो कि मिलिट्री शासन ही चल रहा है, में सो गए वो अचेतन मस्तिष्क जो है वो संसार में घूमता रहता है, इस जन्म की या पूर्व जन्म की स्मृतियों में नहीं कर, वो है स्वप्न। और साक्षात्कार जो होता है वो होता है भक्त आत्माओं को। इतनी बुद्धिशाली आत्मा नहीं होती, बुद्धि की तीखी, लेकिन जिन्होंने अभिविचारी बुद्धि बनाई हुई है उनको साक्षात्कार होते हैं। जैसे बाबा ने कहा नवदा भक्ति वाले साक्षात्कार करते हैं, तो यहां भी भक्ति भावना जिनमें ज्यादा होती है वो साक्षात्कार करते हैं। वो स्वप्न जैसा ही होता है लेकिन अंतर ये होता है, वो सुसुप्त अवस्था में होता है और वो जागृत अवस्था में भी होता है।
बाबा जब इब्राहिम आए थे उसके बाद वो कुरान लिख नहीं पाया, 1500 वर्ष आने के बाद वो
नहीं, नहीं,
मोहम्मद नबी पैगंबर
नहीं, 1500 वर्ष के बाद नहीं,
1000 वर्ष क्रिश्चियन,
हाँ जी 1000 वर्ष
और
1000 वर्ष के बाद क्रिश्चियन क्राइस्ट आया, और उसके 200-300 वर्ष के बाद
मोहम्मद नबी
पैगंबर। मतलब द्वापर युग पूरा समाप्त, द्वापर युग पूरा समाप्त होने पर जब आ जाता है
ये कुरान की भी इब्राहिम से आया, बट लेकिन वो लोगों ने ये मेंशन करता ही नहीं, इब्राहिम को मानता है बट लेकिन ऐसे बोलता है ये कुरान मोहम्मद नबी पैगंबर ही लिख दिया।
उसका कारण ये है कि इस्लामी जो थे, इस्लाम धर्म जब शुरू हुआ तो वो मूर्तियों की पूजा करते थे,
वो काबा में
वहाँ वो देवताओं को मानते थे, ये सारी देवताओं की मूर्तियां और उनकी पूजा करते थे। मोहम्मद जब से आए हैं तो उन्होंने मूर्ति की पूजा खंडन करवा दी, ये सब अंधश्रद्धा है, ये मूर्तियां कोई डीटीज नहीं होती, देवताएं नहीं होते, ये कोई भगवान नहीं होते, अंधश्रद्धा का खंडन कर दिया। तो जो इब्राहिम है वो किसकी औलाद है?
वो कृष्ण की आत्मा को मनमता।
इब्राहिम जो आता है 2500 वर्ष के बाद दुनिया में आया तो औलाद किसकी हुआ? देवताओं की औलाद हुआ ना, तो देवताओं की ज्यादा नजदीक है,
इसलिए ही वो कल्पवृक्ष में
वो सब धर्म जो है वो धर्म पिता है अपने अपने अहंकार में बैठे हुए हैं सामने। एक इब्राहिम ही ऐसा है जो भारत की ओर बैठा हुआ है और वो ही पहले मरेंगे, मुसलमान नहीं मरेंगे हमारे साथ, जीते जी भी नहीं मरेंगे। क्या पांडवों के साथ कौन गया?
कुत्ता।
मुसलमान बड़े कुत्ता हैं या इस्लामी बड़े कुत्ता हैं? बढ़िया कुत्ता कौन है? अल्सेशियन बुलडॉग कहो।
बट लेकिन बाबा ये इस्लामी बहुत ज्यादा है या मुसलमान?
वो जब मोहम्मद आए तो सबको कन्वर्ट करके उन्होंने मुसलमान बना दिया,
इस्लामी को भी।
हाँ थोड़े से इस्लामी रह गए अरबियंस। मुसलमानों में या मुस्लिमियों में कोई भी मूर्ति पूजा करने वाले अब नहीं है,
कोई नहीं,
सब कन्वर्ट हो गए।
अल्प वृक्ष का बाप है प्रजापिता, प्रतीक है। अंत तक वो प्रजापिता वो प्रवृत्ति मार्ग है, फिर प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाला है, फिर भी वो सन्यास धर्म कैसे आ गया? उनको भी बाप होना चाहिए ना।
प्रजापिता तो आदि से अंत तक प्रवृत्ति में रहने वाला है,
रहने वाला।
लेकिन प्रजापिता अकेला देवता धर्म स्थापन करता है क्या?
नहीं।
हाँ, कौन होता है साथी? उस साथी के बगैर देवता धर्म की स्थापना हो ही नहीं सकती। कौन है वो साथी? है
सचिव
ये ब्रह्मा कुमारियां जो हैं, चंद्रवंशी, ये सन्यासी हैं, ये प्रवृत्ति मार्ग के गृहस्थी हैं, सन्यासी हैं। वो सन्यासियों के लिए बोला है, ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी सभी जय हो जाएगी। इनमें जन्म जन्मांतर की प्योरिटी है।
और ये शंकराचार्य बाल ब्रह्मचारी नहीं है बाबा?
तुम्हारी बात का अभी जवाब मिला क्या?
ये उनसे ही ये
हाँ संन्यास धर्म निकला। राजा का सिर का ताज जो होता है या मनुष्य की जो पगड़ी होती है वो उसकी इज्जत कही जाती है। अगर कोई टोपी को पाग को उतार करके जूता मार दे तो बेइज्जत कहा जाएगा। तो ऐसे ही जब एडवांस की शूटिंग होती है तो जो उत्तर प्रदेश है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, और जब बेसिक की शूटिंग होती है उस समय हिंदुस्तान के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान। उसका नाम पाकिस्तान क्यों रखा गया? जब पवित्र स्थान, मुसलमान पवित्र होते हैं क्या? है
सभी इकट्ठे याद करते हैं,
ये तो याद करते हैं।
अब तो पवित्र तो आएगा आएगा, तो याद से
संगठन तो है, संगठन तो साबित होता है, लेकिन संगठन को देखते हुए भी प्रैक्टिकल जीवन भी तो देखा जाता है। संगठन तो बाहर से दिखाई पड़ेगा कि हाँ दुनिया में इनकी काबा में या अजमेर शरीफ में इनकी दुनिया में सबसे बड़ी गैदरिंग होती है, वो तो दिखाई पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान में जो मिलिट्री शासन सदैव रहता है, क्या उससे ये साबित नहीं होता कि ये आपस में फूटे हुए हैं सबसे ज्यादा? इनकी यूनिटी बिगड़ी हुई है। हिंदुस्तान में मिलिट्री शासन अब तक भी नहीं हुआ और पाकिस्तान में लगातार मिलिट्री शासन हो रहा है, तो अंदर की यूनिटी दिखाई पड़ रही है बुद्धिमानों को या लूपोल दिखाई पड़ रही है? लूपोल है। ऐसे यहां बेहद की दुनिया में भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ब्रह्मा बाबा पाकिस्तान को छोड़कर के कहां आ गए?
हिंदुस्तान में आ गए और मुसलमान सब पाकिस्तान में चले गए। मुसलमान नाम क्यों उन्होंने डाला? उनका कहना है कि मुसलिम ईमान है जिनका, वो है मुसलमान। क्या इसका मतलब हिंदुस्तान के बेईमान है क्या? हिंदुस्तानी बेईमान नहीं है? अच्छा, हिंदुस्तान के राजाओं ने सैकड़ों रानियां रखी और मुसलमानों ने चार की मियाद लगा दी कि एक जीवन में एक पुरुष मुसलमान चार शादियां कर सकता है, चार स्त्रियां रख सकता है। तो बेईमान हिंदुस्तान के लोग हुए यथा राजा तथा प्रजा, या मुसलमान हुए?
जो ग्रंथों में होता है ना,
ग्रंथों
जो शास्त्र आता है ना, ऐसा है ऐसा सुनकर के
प्रैक्टिकल में नहीं हुआ राजाओं में, हिंदुस्तान में राजाओं में प्रैक्टिकल में नहीं हुआ, तो फिर शास्त्रों की बात क्यों करते हो? प्रैक्टिकल में भी हुआ ना, हिस्ट्री में ये बात है ना। इसका मतलब ये हुआ कि प्रजापिता वाली आत्मा भी जब दुनिया में कलयुग शुरू होता है तो वो पासा पलट लेती है। क्या मुगल सम्राट पहला पहला कौन हुआ है? क्या बाबर? मुस्लिम धर्म का फाउंडेशन लगाया और यही के आदमी क्या हुआ? आदमी जितने भी हिंदू थे, अपन को हिंदू कहलाने वाले, वो सारे ही ब्राह्मण ब्रह्मा की गोद में आ गए। और जिसका ईमान मुसलिम था वो चला गया। दो हिस्से हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में भी। तो वो अपने को कहते हैं पाकिस्तान, हद की दुनिया वाले पाकिस्तान में नहीं है क्या? जिसके इरादे पाक हैं वो है पाकिस्तानी, और जिसके इरादे नापाक हैं वो पाकिस्तानी नहीं कहा जाता। अभी भी दो ग्रुप हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, एडवांस पार्टी पाक इरादों वाली है या नापाक इरादों वाली है? क्या कहेंगे हैं? जो इरादे हैं ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी के, नापाक इरादे हैं या पाक इरादे? पाक माने पवित्र है? कुछ ऐसा ही नहीं। जो उनमें अव्वल नंबर है वो क्या है? पाक है। तो जो पाक इरादे वाले हैं उनका कहना है कि ये जो कश्मीर है वो कश्मीर हमारा होना चाहिए। हिंदुस्तान के कहते हैं कि नहीं, जब बंटवारा हुआ था जैसा बंटवारा हुआ था वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान को अखंड होना चाहिए या खंडित होना चाहिए? अखंड होना चाहिए। जब अखंड दुनिया बनेगी तो उसमें पांडवों के साथ वो कामी इस्लामी कुत्ता होगा या नहीं होगा? होगा, मिक्स होकर के रहना है। क्यों? कि जब द्वापर युग शुरू हुआ था तो शुरुआत होने से पहले सारे के सारे हिंदुस्तानी थे या मुसलमान थे? सारे हिंदुस्तानी थे, भारतवासी थे। ये तो बाद में भेद डाला गया है, कन्वर्ट हुए हैं तब। तो हम ओरिजिन चीज को पकड़े या बाद वाली चीज को पकड़े? कोई हिंदुस्तानी नहीं, कोई पाकिस्तानी नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं। हाँ, इतना अंतर है, कोई देवी देवता धर्म के पक्के हैं, कोई थोड़े कच्चे हो गए तो कन्वर्ट हो गए। तो एक होकर के रहना है, अखंड भारत बनेगा।
जिसने खंडन किया उसने अखंड बनाएगा ना, मतलब कोई नहीं।
खंडन जो किया है वो गांधी जी ने किया या जिन्ना ने किया या दोनों ने किया? दोनों ने किया ना। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उसमें दोनों ही भागीदार थे। बेहद में गांधी कौन है? ब्रह्मा बाबा। और बेहद में जिन्ना कौन है? जिन्ना। तुम जिन्न हो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जित ना। जो द्वितीय विश्वयुद्ध हुआ 42-45 के बीच, उसमें जीता नहीं, हार गया। राम फेल हुआ, राम नापास हुआ या पास हुआ? नापास हुआ। नापास हुआ माने जीता नहीं, तो नाम क्या पड़ गया? जिन्ना। दोनों ही भागीदार हैं। राम इसलिए भागीदार है कि एक के आदि में पूरा ज्ञान था ही नहीं, तो बुद्धिवादी आत्मा है। जो बुद्धिमान है उसको ज्ञान का पूरा डोज चाहिए या नहीं चाहिए? पूरा डोज था ही नहीं, और अभी तो ज्ञान का पूरा डोज मिल गया है या नहीं मिल गया? तो अभी जिन्ना नाम पड़ेगा कि जीतवान नाम पड़ेगा? अभी तो जीतेगा भाई, जीतेगा। इसलिए अंत में जब शमशान घाट ले जाते हैं तो अंत में कहते हैं राम नाम सत्य है। बच्चा बाप का कहा जाता है या अम्मा का कहा जाता है? खेती जो बीज बोता है उसकी कही जाती है या जमीन जिसकी मालिक की होती है उसकी खेती होती है? एक होता है जमीन वाला और एक होता है जमीन में बीज बोने वाला। खेती किसकी मानी जाती है? बीज बोने वाले की मानी जाती है। ऐसे ही ये जो कश्मीर है, इसको उसको काट के पाकिस्तान में कर दिया जाए या उत्तर प्रदेश है उसका माथा काट दिया जाए, बंटवारा कर दिया जाए, ये छी छी बातें हैं।
अभी आंध्र प्रदेश में भी ऐसी हालत आ रही है।
हाँ जी,
आंध्र प्रदेश का हेड जो है तेलंगाना, वो भी सेपरेट के लिए।
महाभारत में धृतराष्ट्र ने क्या किया, पांडवों का हिस्सा इंद्रप्रस्थ अलग बना दिया, दो हिस्सों में राज्य को बांट दिया। अरे जन्मदात्री माता को बांटा जाता है क्या? हिस्से किए जाते हैं क्या?
बाबा काश्मीर के महाराजा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी आर्य समाज ने जो
दान में दे दी,
दान में दे दी।
हाँ जी,
बेहद
ये तो कलयुग की बात है। कलयुग में जो राजाएं हुए हैं वो कलयुगी राजाएं सतयुगी सूर्यवंशी आत्माओं को सपोर्ट करेंगे या आर्य समाजियों को सपोर्ट करेंगे? आर्य समाजियों को ही सपोर्ट करते हैं। वो ही आर्य समाजी जो राजाओं का नाम निशान खत्म कर देते हैं, प्रजातंत्र राज्य चलाए देते हैं, उन्हीं को दिया, उन्हीं ने धोखा दे दिया राजाओं। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। क्या हुआ? सतयुग के अंत में राजा कौन बनता है? सतयुग के अंत में राजा बनने वाला नारायण कौन? आर्य समाज। संगम युग में उसका क्या पार्ट होता है? इसका पार्ट होता है ढेर का ढेर लिटरेचर छपाओ, मोटी मोटी किताबें ग्रंथ बनाओ, उनमें अपना नाम डालो, नाम मान शान कमाओ और सारी दुनिया में हवाई जहाजों पे घूमते फिरो, सारी संस्था को अपनी मुट्ठी में कर लो, तो ईश्वर की दृष्टि में कमाई की या गवाई की? गवाई दिया राज्य। इसका रिजल्ट होता है कि यहां भी ज्ञान की सारी प्रॉपर्टी का साहूकार राम वाली आत्मा बन जाती है, यहां शूटिंग हो जाती है और सतयुग के अंत में राम वाली आत्मा राजा बन जाती है और आर्य समाजियों से सतयुग की महाराजाई नारायण का टाइटल छिन जाता है, बाप दादा का नाम रोशन करने के बजाय क्या किया? बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया।